الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ रहे हैं मारिफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 से, और इन आयात के हम मारिफ मसाइल पर थे। तो उसमें जो आखिरी बात पढ़ ली थी कि इनके सामने यानी इन लोगों ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने जो भी एतराज़ात किए थे, तो ये सब जो है ना ये दुश्मनी की वजह से थे। और वो दुश्मनी भी जो इनकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो उस पैगाम की वजह से, उस इस्लाह की मेहनत की वजह से दुश्मनी थी जो कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर ही कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से फरमाया कि इनके डिमांड्स अगर हम पूरी करते रहेंगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम इनकी डिमांड्स नहीं पूरी कर रहे हैं। सही है, इनके सामने किताब ला दें या उसको जो है वो छू भी दें, फिर भी इन्होंने यही कहना है इन हादा इल्ला सिहरु मुबीन, कि नहीं है ये सिवाय एक खुले हुए जादू के। आगे हजरत मूसा शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरी आयत के नुजूल का भी एक वाकया है कि यही अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और नवर बिन हारिस और नौफिल बिन खालिद, ठीक है, ये तीन हजरात एक मरतबा जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये मुतालबा पेश किया कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लाएंगे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से एक किताब लेकर आए और उसके साथ चार फरिश्ते आए जो इसकी गवाही दें कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से आई है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, चार फरिश्ते उतरेंगे उसके जुलू में, ये किताब उतरेगी उनके जुलू में, तो तब जो है ना वो हम बात मानेंगे आपकी। ठीक है, तो कल भी जो थोड़ी बात हुई थी ये अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ठीक है, तो इनके बारे में साजिद ने कहा था कुछ और मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था कि वो वाला वाकया जो था ना वो उसमें कौन से वाले सहाबा थे, तो मौका हमें तो नहीं मिला, लेकिन आप में से किसी तालिबा ने फिर वो किताब का शेयर पेज जो है वो हमारे साथ शेयर कर लिया था, तो उसमें से फिर हम आपको बता देते हैं। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली किताब जो कि हमारी जो बच्चों की सीरत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास हुआ करती थी, तो उसके अंदर हम इसी क्लास किताब को ज़्यादा फॉलो किया करते थे, तो उसमें हज़रत इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह जो उस किताब के मुअल्लिफ़ हैं उन्होंने ये वाक़िया लिखा था कि मकाम अबवा में अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ठीक है, अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया बगर्ज़े इस्लाम मक्का मुकर्रमा से मदीना आते हुए मिले। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस जा रहे थे, तो ये दोनों आकर के मिले, जो हिजरत करके यानी ये दोनों जो है ना वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई होने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई भी थे, यानी दूध शरीक भाई भी, एक ही हलीमा सादिया का दूध इन्होंने भी पिया था जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने पिया था, ठीक है। तो ये रजाई भाई थे, कौन थे ये? अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब, यानी हारिस कौन हुए? नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा, ठीक है। तो ये सगे चचाजात के बेटे थे, यानी फर्स्ट कजन थे नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है, अबू सुफियान बिन हारिस। कल किसी ने आपसे नाम भी पूछा था तो मैंने कहा था कि मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा। तो अबू सुफियान बिन हारिस नबुवत से पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, किसी वक्त आपसे जुदा नहीं होते थे, ठीक है। जब इस हाजिज ने उर्दू मुहावरे में वो वाली मिसाल से समझाया था कि जिसको लंगोटिया यार कहा जाता है, लंगोटिया यार, ठीक है, उस दोस्त को कहा जाता है जो कभी भी जुदा नहीं होता, हर वक्त साथ साथ, हर वक्त साथ साथ, गोया के दो टांगे जो है ना, उसकी एक टांग और इसकी एक टांग जो है वो एक ही लंगोट के अंदर है, ठीक है ना। अब एक ही लंगोट में या एक ही पतलून के एक ही पाइंचे के अंदर दोनों की टांगे होंगी तो वो कभी जुदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो उर्दू में मुहावरा बन गया लंगोटिया यार, ठीक है। तो ये गोया के नबी अलैहिस्सलाम के लंगोटिया यार थे, अबू सुफियान बिन हारिस, फर्स्ट कजन नबी अलैहिस्सलाम के, चचाजात भाई, ठीक है। नबुवत और बिअसत के बाद ये मोहब्बत मुनकलिब भी अदावत हो गई, यानी बिल्कुल उलट गई ये मोहब्बत, और ये अदावत से बदल गई, ठीक है। और ये फिर आपके हिज्र में, यानी आपके जो है ना वो इंसल्ट में, ये नबी अलैहिस्सलाम के ये शेर भी कहे कि जिनका हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ठीक है। यानी जो सगे थे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी में शेर कहने शुरू कर दिए, अल्लाह ताला ने जवाब किससे दिलवाया? जो बिल्कुल दूर के थे, जिनके कोई रिश्तेदारी नहीं थी, अंसारी सहाबी थे, हसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जवाब दिया। किसको जवाब दिया? नबी अलैहिस्सलाम के फर्स्ट कजन को, लंगोटिया यार को जवाब दिया। देखिए अल्लाह ताला ऐसे काम करवाते हैं, अपने 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 जब साथ छोड़ जाते हैं ना, अल्लाह ताला किसी गैर को अपना बना देते हैं, गैर से रिश्तेदारी बन जाती है दीनी रिश्तेदारी, और वो दीनी रिश्तेदारी जो होती है वो तबई बायोलॉजिकल रिश्तेदारी से ज्यादा मजबूत बन जाती है, हत्ता के वो लोग जो हैं जिनके साथ कोई बायोलॉजिकल रिश्तेदारी नहीं है वो फिर बायोलॉजिकल रिश्तेदारों की दुश्मनी में मदद करते हैं, दुश्मनी के खिलाफ मदद करते हैं, जैसे हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदद करी अपने अशार के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम की। ये इबरत वाली बातें, ये किस्से कहानियां नहीं है ना, ये टाइम पास के लिए आपको जो है वो जोर जोर से बोल बोल करके जो है वो कुछ पढ़ा दिया और बस खत्म बात। ये इबरत की बात है। क्या मतलब इबरत की? कि हमारे घरानों में भी यही होता है, जब आप हक की दावत शुरू करते हैं और बातिल से किसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो अपने जो है ना वो पराये बन जाते हैं, अपने जो है वो दुश्मनी पे उतर आते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर इंसान अगर दिल बर्दाश्ता होता है, इंसान जो है उसको दुख होता है, अल्लाह ताला जो है वो गैरों को अपना बना देते, गैरों को अपना बना देते, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम बहुत दिल बर्दाश्ता हुए थे लेकिन अल्लाह ताला की अतात नहीं छोड़ी, अपने काम से जो है वो नहीं रुके, अल्लाह ताला ने गैरों को नबी अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बना दिया। तो हमारा क्यों नहीं बना सकता? हमारा करने का काम किया है कि जो अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है, यानी हमारे बड़ों ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई वो हम करते रहे, वो हम करते रहे, वो हम करते रहे, चाहे कोई दुश्मनी करे, चाहे अपने दुश्मनी करें, चाहे कुछ भी करें, उससे हम छोड़े नहीं अपना काम, ठीक है। तो अबू सुफियान बिन हारिस के साथ उनका बेटा जाफर भी था जब ये इस्लाम कबूल करने के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, ठीक है। और दूसरे कौन थे? वो अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे, यानी ये भी फर्स्ट कजन थे, फूफीजाद कजन, ठीक है। यानी आपकी फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुतलिब के बेटे थे, ये भी आपके शदीद मुखालिफों में से थे। दोनों ने बारगाह नबवी में हाजिरी की इजाजत चाही मगर चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर को उन दोनों से तकलीफें बहुत पहुंची थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज फरमाया, यानी उनसे मुलाकात को अवॉइड किया, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, जैसे कहते हैं ना, नबी ने एराज फरमाया उनसे मुलाकात को और हाजिरी की इजाजत नहीं दी। सोचे रहमतुल्लिलआलमीन, राइट, और कोई दुश्मन नहीं आ रहा बल्कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इतना दिल दुखा हुआ। देखिए नबी अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, बशर थे, ठीक है,
तो जो बशरी तकाजे होते हैं ना, वो बहरहाल इंसान के अंदर रहते हैं। हमारा दिल तो चाहता है कि हम जिसको पसंद करें उसको खुदा बना लें फौरन, बशरी तकाजों से उसको फारिग कर देते हैं, उसको खुदा बना देते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा वुलू होता है ये, लेकिन हकीकत तो ये नहीं होती है ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसा बशरी तकाजा था कि एहराज फरमाया, उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, ठीक है, और हाजिरी की इजाजत नहीं दी। किस मौके पर? बीवी ने मदद करी, अल्लाह की मर्जी से बीवी जो है ना वो काम आ गई। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आपके चचा का बेटा है और दूसरा आपकी फूफी का बेटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे इनसे मिलने की जरूरत नहीं है। बीवी की इस बात के ऊपर भी नबी फरमा रहे हैं मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, यानी आई डोंट वांट टू मीट देम, ठीक है। तो इब्ने फरमाया इब्ने अम ने, यानी मेरे चचा के बेटे ने मेरी आबरू रेजी करी है, मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए हैं, घटिया किस्म की बातें मेरे खिलाफ करी हैं, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, झूठे इल्जामात लगाना और जो है ना वो इज्जत को खराब करना, ये एक बागैरत इंसान के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं होता ये, ठीक है। और फरमाया कि फूफी का बेटा वही शख्स है जिसने मक्का मुकरमा में मुझे ये कहा था कि खुदा की कसम तुम पर हरगिज ईमान नहीं लाऊंगा, यहां तक कि तू सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ जाए और मैं बचश्मे खुद तुझको देख रहा हूं कि तू आसमान पर चढ़ रहा है, और फिर तू एक दस्तावेज लेकर आसमान से उतरे और चार फरिश्ते तेरे साथ हों और ये गवाही दें कि तुझको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, फिर भी मैं तुझ पर ईमान नहीं लाऊंगा। ये इन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने ये कहा था, मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लेकर के आऊंगा, चार फरिश्ते भी साथ आएंगे ना, फिर भी नहीं लेकर के आऊंगा। तसव्वुर करें ना कितना दुश्मनी, कितने गुस्से में थे वो लोग इस बात के ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे अल्लाह का रसूल मान लो और मेरी बात मान लो, ठीक है ना। अल्लाह ताला ये चाहता है, मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक है, तुम मुझसे ताल्लुक बना लो, मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक है, ठीक है। इस बात के ऊपर इतना गुस्सा कि नहीं, हमारा तो अल्लाह से जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक है, तुम कहां से बीच में आ गए हो हमारे और अल्लाह के दरमियान, ठीक है। तो उम्मे सलमा रज़ी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मकारम अखलाक से ये उम्मीद है कि आपके खवान नेमत से आपका चचाजाद भाई और फूफीजाद भाई सबसे ज्यादा महरूम और बदनसीब ना रहेगा, जब आपका तरहम और औफ आम है तो फिर यही क्यों महरूम रहे, राइट। आप जो है वो ऐसे लोगों को जो है माफ फरमा देते हैं, इतना जो है वो माशाल्लाह आपकी सखावत है, सब कुछ है, तो जो आपके इतने करीबी रिश्तेदार हैं यही क्यों महरूम रहे, ऐसे बात करी। देखिए उम्मे सलमा रतान बीवी थी और बीवी होने का हक अदा कर दिया उन्होंने, राइट, कि नबी अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्ला, जैसी बीवियां आम तौर पे एक तस्वुर बनावे कि जी बीवी के लिए तो शौहर को डांटना जायज है, राइट, और बीवी के लिए तो शौहर की जो है ना वो इज्जत खराब करना जो है वो कोई जायज काम हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बीवी ने अपने तौर पर खुद ही फतवा दे दिया अपने आप के लिए, ठीक है ना। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को डांटा नहीं कि ये आप तो गलत बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो आप इतना रहम का मामला फरमाते हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो आप इन लोगों के साथ जो है वो रहम का मामला नहीं फरमा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये मैंने बड़ी तमीज से जो है वो एतराज करना उसको कहलाएगा, इवन उन्होंने तमीज से भी एतराज नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है ना। और कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की रहमत और मकारम अखलाक के बारे में बात करी कि यही महरूम रह जाएंगे, तो फिर तो ये कितनी अजीब बात हो जाएगी, ठीक है। उधर अबू सुफियान बिन हारिस ने भी ये कहा कि अगर आप अपनी बारगाह में हाजिरी की इजाजत नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे जाफर को लेकर किसी सहरा में निकल जाऊंगा और भूखा प्यासा मैं अपनी जान दे दूं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इन लोगों को इजाजत दे दी और इनके इस्लाम के जो वो इनके बैते इस्लाम को कबूल कर लिया। इन्होंने लिखा है कि जो बड़ों ने जिम्मेदारी लगाई उसमें लगे रहने से यही मुराद है ना, कि जो काम और मामूलात करने के लिए कहे हैं वो करें। जी हाँ बिल्कुल, जो काम करने को कहे हैं और जो मामूलात करने को कहे हैं वो करें, जितना करने को कहे हैं उतना करें, यही है बड़ों कर लगाया वो काम करते रहना। अच्छा फिर फरमाते हैं कि इसका जवाब हक तआला ने एक तो ये दिया कि ये गफलत शियार ऐसे मुतालबात करके अपनी मौत व हलाकत को दावत दे रहे हैं,
क्योंकि कानून इलाही ये है कि जब कोई कौम किसी पैगंबर से किसी खास मुआजजे का मुतालबा करे और अल्लाह ताला की तरफ से उनका मांगा हुआ मुआजजा मुआजजा दिखला दिया जाए, तो अगर वो फिर भी मानने और इस्लाम लाने में जरा ताखीर करें तो फिर उनको अजाब आम के जरिए हलाक कर दिया जाता है। अजाब आम यानी कलेक्टिवली उनको हलाक किया जाता है, वरना इंडिविजुअली तो अजाब आता ही रहता है हर काफिर के ऊपर मरने की शक्ल में। ठीक है, तो इस तरह की डिमांड के बाद, पूरी कर देने के बाद भी अगर वो ना माने तो फिर इसलिए फरमाया कि लौ अनज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु थुम्मा ला युनज़रून, यानी अगर हम उनका मांगा हुआ मुआजजा दिखला दें कि फरिश्ता भेज दें, क्योंकि फरिश्ते का इंसानों के सामने जाहिर हो जाना नबी की वजह से हुआ ना, नबी के ताल्लुक से हुआ, तो इसको मोजजा कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली होता नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम नहीं बनाया कि फरिश्तों को आप देख लें, तो अगर इंसान फरिश्तों को देख लेंगे तो ये एक अनयूजुअल चीज होगी, असबाब से हट करके एक चीज होगी, तो ऐसी चीज को मोजजा कहा जाता है जब वो किसी नबी की प्रेजेंस में हो या नबी की वजह से हो, तो उसको मोजजा कहा जाता है। ठीक है, और ये कौम मानने वाली तो है नहीं, तो इस मोजज़े के देखने के बाद भी जब खिलाफ वर्जी करेगी तो अल्लाह का हुक्म उनके हलाक करने के लिए जारी हो जाएगा, और उसके बाद उनको जरा भी मोहलत ना दी जाएगी। इसलिए उनको समझना चाहिए कि उनकी मांगी हुई कोई निशानी अगर जाहिर नहीं की गई तो इसमें उनकी खैर, ठीक है, उनकी भलाई है। अब मानना तो इन्होंने था, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने बाद में जो है मुसलमान हो जाना था, जैसे इस पूरे वाक्य में अभी भी हमने पढ़ा और तो पीछे भी पढ़ा था हमने, लेकिन इस वक्त उन्होंने मुसलमान नहीं होना था, ये अल्लाह ताला को पता था। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना, अगर उनकी बात पूरी कर दी जाती तो फिर अजाब उनके ऊपर वाजिब हो जाता। इसी बात का एक दूसरा जवाब चौथी आयत में दूसरे अंदाज से दिया गया कि ये सवाल करने वाले अजीब बेवकूफ हैं कि फरिश्तों के नाजिल करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि फरिश्तों के नाजिल होने की दो ही सूरतें, एक तो ये कि फरिश्ता अपनी असली हैयत और सूरत में सामने आ जाए तो उसकी हैबत को तो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि हौल खा करके फौरन मर जाने का खतरा है। ठीक है, कल इस पर बात हो चुकी थी। दूसरी सूरत यह है कि फरिश्ता बशक्ल इंसानी आए, जैसे जिब्राइल अमीन करीम, जब जिब्राइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत मरतबा बशक्ल इंसानी आए। बशक्ल फरिश्ता भी कम अज कम दो दफा है, बशक्ल फरिश्ता जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है वो बेहोश हो गए थे। ठीक है, एक दफा तो कम से कम, तो लेकिन बाकी वक्त में जो है वो हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला की शक्ल में आते थे। तो इस सूरत में इस सवाल करने वाले को जो एतराज आप पर है वही उस फरिश्ते पर भी होगा कि ये उसको एक इंसान ही समझेगा, डिनायर है। जैसे कि इवन लूत अलैहिस्सलाम के सामने जो अल्लाह ताला ने जो उनको दो फरिश्ते भेजे थे ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, जो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, वहां पे जाकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी थी, और फिर वहां से जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के पास गए थे। तो अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन फरिश्तों को देख लिया था लेकिन वो इंसानी शक्ल में थे, तो ये समझे कि ये तो कोई बड़े ही खूबसूरत किस्म के नौजवान हैं, और फिर वो लूतियों का जो बसला था उन्होंने वहां इनको भी जो है वो फिर छीनने की कोशिश करी, लेकिन ये तो फरिश्ते थे। तो भाई फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं तो इंसान उनको इंसान ही समझता है ना, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको इंसान ही समझा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है कि भाई वो इंसान ही समझते हैं और फिर वही एतराज। ठीक है, और अगर वो फरिश्ता अपनी असल शक्ल में आ जाता तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होना था। तो इन तमाम मुआनिदाना सवालात के जवाब देने के बाद पांचवी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया कि ये इस्तेहजा व तमस्खुर और ईजा रसानी का मामला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रही है, कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ मखसूस नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी सब रसूलों को ऐसे दिलदोज और हिम्मत शिकन वाकयात से सबका पड़ा है, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंजाम ये हुआ कि इस्तेहजा व तमस्खुर करने वाली कौम को इस अजाब ने आ पकड़ा जिसका तमस्खुर किया करते थे। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ना, ठीक है, कल जो है वो आप में से कुछ साथियों के साथ जरा तफसीली बात भी हो रही थी इस टॉपिक के ऊपर कि ये एक मॉडल है, ठीक
ठीक है, मॉडल समझते हैं ना, कि यानी जिसमें एक कोई होता है, फिर कोई दूसरा होता है, कोई जो है वो सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, कोई पीयर होता है, कोई जो है वो किसी और मुकाम के ऊपर होता है। तो अब ये सारी चीजें मिलकर के एक मॉडल बनती है। जैसे आप इवन वो भी देखते हैं, काबतुल्ला का मॉडल है, मस्जिद का मॉडल है, तो मॉडल के अंदर पे जो है ना ये चीज इधर रखी हुई है, मीनार इधर रखा हुआ है, और जो है वो गुंबद इधर रखा हुआ है, तो सफ़े इधर बिछी हुई हैं। तो थ्री डायमेंशनल चीज होती है जिसको के मॉडल कहा जाता है, वरना जो तस्वीर होती है उसको वो टू डायमेंशनल चीज होती है, तो उसको मॉडल नहीं कहा जाता तस्वीर को। तस्वीर को जो है ना वो यानी उस वो टू डायमेंशनल चीज को मॉडल नहीं कहा जाता, उसको तस्वीर कहा जाता। थ्री डायमेंशनल चीज जो होती है ना उसको मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो मॉडल के अंदर फिर कम से कम तीन डायमेंशंस तो होती है। ठीक है, अब उस मॉडल के अंदर जो चीजें मौजूद है ना, ये चीजें जो हैं वो बदलती भी रह सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद का मॉडल है आपके सामने, ठीक है ना, तो अब जो है ना वो जो मॉडल को बनाने वाला है वो कहे कि भाई अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल के अंदर जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म का मीनार लगा दूं, ठीक है ना, तो वो पुरानी मीनार को उसमें से हटा देगा और एक दूसरा मीनार लगा देगा। मैं चाहता हूँ कि जी गुंबद जो है ना वो एक डिफरेंट टाइप का गुंबद लगा दूं, तो वो उस गुंबद को हटा देगा, वो एक दूसरा गुंबद लगा देगा, ठीक है ना। तो मॉडल तो वही रहेगा, लेकिन मॉडल के अंदर जो किरदार हैं या मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इंसानी मुआशरे का भी बिल्कुल यही मामला है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने मॉडल बना दिया है और इस मॉडल के अंदर जो किरदार है ना वो चेंज होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मॉडल चेंज नहीं होता, किरदार चेंज होते रहते। दूसरे अल्फाज में इसको ये भी कहा जा सकता है कि निजाम चेंज नहीं होता, चेहरे बदलते रहते हैं। ठीक है, चेहरे बदलते रहते हैं, निजाम चेंज नहीं होता। तो जब मॉडल सेम है, निजाम सेम है, तो अब जो है ना चाहे जमाना कुछ भी हो वही मामला होगा। ठीक है ना, वही चक्कर, वही सारे के सारे मामला होंगे, क्योंकि मॉडल इज द सेम। ठीक है, तो देखें नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये जो कुछ हो रहा था ना, ये सब कुछ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका है। क्यों पहले हो चुका है? क्योंकि मॉडल इज द सेम, राइट, इट इज द सेम मॉडल। किरदार बदल रहे हैं, पहले जो है वो अल्लाह तो एक ही था, अल्लाह तो बदलता नहीं है, है ना, अल्लाह ताला तो बदलते नहीं है। तो नहीं कि नाउज बल्ला अल्लाह ताला ने अपने आप को बदल दिया, कोई दूसरा अल्लाह लगा दिया मॉडल के अंदर, नहीं, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, तौहीद, वन एंड ओनली, ठीक है ना। लेकिन जो अल्लाह के नीचे नबी थे ना, वो पहले जो है वो ईसा अलैहि सलाम थे, उनसे पहले जो है वो यहया अलैहि सलाम थे, उनसे पहले जो है जकरिया अलैहि सलाम थे, उनसे पहले जो है वो और थे और और थे और और थे, कभी जो है वो दाऊद अलैहि सलाम आ गए, फिर जो है वो उनसे पहले जो है मूसा अलैहि सलाम थे, उनसे पहले जो है फलाने थे, यूसुफ अलैहि सलाम थे और अयूब अलैहि सलाम थे और इसहाक अलैहि सलाम। चेहरे बदल रहे हैं, कंपोनेंट्स बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं, मॉडल इज द सेम, और उनके नीचे जो है वो वही अवामुन्नास, उन अवामुन्नास में से, ठीक है ना, नबियों के नीचे कौन है? अवामुन्नास है। उन अवामुन्नास में से फिर दो कैटेगरीज बन गई, एक ने जो है वो नबी को तस्लीम कर लिया कि हाँ ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, तो वो ईमान वाले बन गए, और जिन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं क्यों उनकी मानूं, मैं इनको क्यों तस्लीम करूं, मैं और मेरा अल्लाह, मी एंड माई लॉर्ड, मी एंड माई गॉड, राइट, ये बीच में किधर से आ गए, मैं नहीं मानता इनको, वो काफिर बन गए, वो काफिर बन गए। ठीक है, तो मॉडल इज द सेम, तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को यही बात समझा रहे हैं, यही बात याद दिला रहे हैं, यही बात जो है वो दिलासा देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, राइट, आप ससरम की ढारस बांधने के लिए, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें इसके लिए, ढारस बांधने के लिए, ठीक है ना, याद दिला रहे हैं कि मेरे नबी, मेरे महबूब, सिंस इट इज द सेम मॉडल, That is why it will keep on happening the same way. तो आप दिल बर्दाश्ता ना हो, पहली दफा आपके साथ ही काम नहीं हो रहा, बहुत सारों के साथ ही हो चुका है, यही मॉडल आगे भी चलता रहेगा। ये नहीं कि पीछे सारा एक मॉडल था, एक मॉडल पे सारे नबी आए, आगे जो है ना वो अल्लाह ताला ने कुछ चेंज कर दिया, नहीं, आगे भी वही मामला चल रहा है। ठीक है ना, बस फर्क ये है कि नबुवत वाला किरदार खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने, अब नबी की मुकाम के ऊपर जो है वो नबी का कोई वारिस होगा, राइट, उलमा मशाइख में से कोई होगा जिसको नबी का वारिस कहते हैं, और उसके नीचे जो है वो अवामुन्नास होंगे, और अवामुन्नास में जो उसको मान करके कि भाई हाँ ये नबी के वारिस हैं, तो नबी का जो पैगाम है तो उसको मैं अपने हालात में कैसे समझूं, ये मैं इन इनकी एक्सप्लेनेशन से मैं समझूंगा, ठीक है ना। ये हमारे शेख हैं, ये हमारे जमाने के आलिम दीन हैं, तो 21st सेंचुरी के अंदर जो अहकामात हैं तो उनको जो है वो कैसे पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब जो है ना मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो भाई ये जो है वो अहकामात के ऊपर अप्लाई होता है, अब ये अहकामात के अंदर फर्ज अहकामात नहीं है, इसका मतलब क्या, क्योंकि 21st सेंचुरी में ये तो नहीं है कि शेख साहब कहें कि जी 21st सेंचुरी में चूंकि जो है ना वो आपके लिए नमाज पढ़ना ज्यादा आसान हो गया है, तो अब जो है ना वो आप 5 की जगह जो है वो 10 नमाजें फर्ज हो गई आपके ऊपर, क्योंकि इस जमाने में जो है ना वुजू करना कितना आसान है, गर्म पानी आता है, घर के अंदर नलका मौजूद होता है, आपको पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, और आपको जो है वो ठुटर ठुटर करके सर्दी में और गर्मी की शिद्दत में जो है वो तकलीफ में रह करके आपको नमाजें नहीं पढ़नी होती हैं, तो इस वजह से ना 10 नमाजें आपके ऊपर फर्ज हो गई हैं, ठीक है। क्या शेख साहब ये काम कर सकते हैं? नहीं, शेख साहब ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो भाई जब 10 नमाजें नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजें ही बताई हैं, तो शेख साहब तो उसको ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं कह सकते कि आप बड़े कमजोर हो गए हैं जो है ना, आप मैं बड़ी मुश्किल हालात में जिंदा हैं, गुनाहों का गलबा है, पूरा मुआशरा खराब हो चुका है, तो ऐसा करें आप जो है ना वो आपके ऊपर 5 नमाजें फर्ज नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ 2 नमाजें फर्ज हो गई हैं, क्या शेख साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, शेख साहब ऐसा भी नहीं कर सकते, ना वो नमाजों की तादाद को बढ़ा सकते हैं ना वो नमाजों की तादाद को घटा सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं ऐसा कोई शेख साहब, कोई आलिम साहब ऐसा कर? नहीं, नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या है इनका, जब ये ना नमाजों की तादाद को यानी फराइज में ना ये जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं ना ये डिक्रीज कर सकते हैं, तो फिर जरूरत क्या है शेख साहब की, ठीक है ना। तो फिर क्या जवाब है इसका, क्या जरूरत है शेख साहब की इस नमाज वाली एग्जाम्पल से, कोई कोई बताए कि शेख साहब की फिर क्या रेलेवेंस रह गई, ना ये नमाजों की तादाद बढ़ा सकते हैं, ना ये नमाजों की तादाद घटा सकते हैं, ना ये जो है वो रिकतों की तादाद में आगे पीछे कर सकते हैं, ना ये जो है वो सजदों की तादाद 2 की बजाय 4 बना सकते हैं या 2 की बजाय 1 बना सकते हैं, ना ये रुकू को जो है वो नमाज में से निकाल सकते हैं, ना ये तशहुद को जो है वो नमाज में से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर शेख साहब की तो कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो फिर शेख साहब क्यों क्यों कहते रहते हैं कि जी शेख 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 होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, ठीक है। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए ये वो बता सकते हैं, तो वो आप जो है वो किताबों से नहीं देख सकते हैं, किताबों में तो लिखा हुआ नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो शेख साहब की क्या रेलेवेंस है इसके अंदर। नमाज का तरीका तो नबी अलैहिस्सलाम जो बता के गए थे वही तरीका है, ठीक है, कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसमें तो फिर शेख साहब की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बुखारी शरीफ में भी आपको किसी ना किसी तरह मिल जाएगा, या जो है वो आपको 1300 साल पुरानी किसी फिका की किताब के अंदर भी मिल जाएगा, तो आज के जिंदा शेख साहब की क्या जरूरत थी। वो इसको अगर को इसके अजर को प्रिजर्व करना सिखाते हैं, नमाज का पाबंद बना सकता है, ठीक है। ये जो है ना जो आप जवाब दे रहे हैं ये दे रहे हैं शैतान से हिफाजत वाला जवाब, जो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, शैतान के धोखों से वरगलों से बचाने का ये सबब बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शैतान आपको रोकता है नमाज पढ़ने से, शैतान आपको उल्टी सीधी जो है वो बातें बताता है, ठीक है, वो इस तरह से आपको फराइज से महरूम करने की कोशिश करता है, शेख साहब जो है वो आपको पॉजिटिव एजेंट बन करके जो है वो याद दहानियां करवाते रहते हैं, शैतान की तदबीरें जो हैं वो उनको समझाते रहते हैं और ये सब, ठीक है। तो शेख साहब की ये रेलिवेंस तो है, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना इस वक्त ये दरअसल शैतान के रेलिवेंस में सवाल नहीं कर रहा, हम ये सवाल कर रहे हैं कि इस जमाने के हिसाब से शेख साहब की रेलेवेंस क्या है। ये एक अच्छा जवाब भी है कि शेख ये सिखाते हैं कि फर्ज किस तरह अदा करें कि दूसरे फराइज मुतासर ना हो, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये वही है शैतान से हिफाजत वाला मामला, ठीक है। हाउ टू इम्प्लीमेंट अल्लाह अहकाम इन आवर लाइव, देखें इसकी जो है ना वो मिसाल ये बनती है
हर किताब भी पूछ कर पढ़नी चाहिए जो शेर अपने। इसकी मिसाल ये बनती है कि नमाज की तादाद तो वो नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, ना नमाज के अंदर के जो है ना वो जो अज्जा हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं, ये सब तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये वो बता सकते हैं ना कि भाई आपके दौर में जो नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद के अंदर जो है ना जो चीजें मौजूद हैं वो तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद नहीं होती थी, ठीक है। अब जो है वो मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने तो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है ना। मस्जिद के अंदर जो है वो एसी लगा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में तो एसी नहीं लगा होता था। आपकी मस्जिद के अंदर कारपेट्स बिछी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में तो कारपेट्स नहीं बिछी हुई थी, ठीक है। तो आप जो है ना वो किताबों से नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की मस्जिद के बारे में जब सुनते हैं पढ़ते हैं और जो है जब आप उसको कंपेयर करते हैं अपने जमाने की मस्जिद से, तो आपके दिल में अगर ये बात आए अपनी अपनी ही अकल से अपना नफ्स ही जो है वो आपको ये समझाए कि भाई ये तो वो हालात नहीं है जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के थे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मस्जिद आके नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की मस्जिद में और उस जमाने की मस्जिद में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो वो आपको ये समझाएंगे कि देखें ये जो फर्क है ना ये इस जमाने का तकाजा है, ठीक है ना। तो आप इसकी वजह से जो है वो मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना ना छोड़ दें कि अब वहां पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, अब वहां पे जो है एसी इस्तेमाल हो रहा है, अब वहां पे जो है वो कारपेट इस्तेमाल हो रहे हैं, और राइट अब जो है आप फिर भी जाकर के नमाज पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है, और ये सारी चीजें आपके ऊपर भी अप्लाई हो। कहने का मतलब ये एक बड़ी लाउजी सी एग्जाम्पल मेरे ख्याल में मैंने आपको दी है, लेकिन मकसद समझाने का ये है कि शेख फराइज को चेंज नहीं कर सकते, तरीके को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके हालात, आपके अहवाल, आपके जमाने, इन सब की रोशनी में आपको गाइड कर, ठीक है। और शैतान आपको मिस गाइड कर रहा होता है, वो भी एक जिंदा हकीकत है। शैतान शैतान किताबों की चीज नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है शैतान ने फलाने को इस तरह वर्गलाया, फलाने को वर्गलाया, अब शैतान इज नो मोर, शैतान मर गया, नहीं शैतान मरा तो नहीं है। शैतान ने तो अल्लाह ताला से जो है वो यौमे युबसून तक की मोहलत मांगी हुई है, अल्लाह ताला ने उसको दे भी दी है, ठीक है। कयामत तक की मोहलत दी है, यौमे युबसून की मोहलत उसको नहीं दी, उसकी फरमाइश को पूरा नहीं किया अल्लाह ताला ने, उसने तो कयामत के दिन तक की फरमाइश मांगी थी, यानी जब लोग उठाए जाएंगे उस वक्त भी उसने जो है वो एक्सटेंशन मांगी थी। अल्लाह ताला ने उठाए जाने वाले दिन तक उसको एक्सटेंशन नहीं दी, अल्लाह ताला ने उसको एक्सटेंशन दी कब तक की गिराए जाने वाले दिन तक ही एक्सटेंशन दी है। जब कयामत बर्पा होगी तो उसमें शैतान भी मरेगा, ठीक है, उससे पहले तो वो नहीं मरने वाला है। तो वो एक जिंदा हकीकत है ना, हमारे साथ लगा हुआ है ना मुस्तकिल, वो भी लगा हुआ है, उसके चेले भी लगे हुए हैं। तो भाई दूसरे साइड पर भी तो शेख चाहिए ना, वो हम कहते हैं नहीं, मैं मी एंड माई लॉर्ड, मी एंड माई गॉड, राइट, यानी बायपास करके ऊपर वाले के साथ मेरा ताल्लुक कौन है, बस है मेरा ऊपर वालों के साथ ताल्लुक, ठीक है ना। तो ये क्या करता है फिर, ऊपर वालों से कोई ताल्लुक नहीं बनता बल्कि शैतान के साथ ताल्लुक बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइव हकीकत है। सही है। बहरहाल मिसाल के तौर पर बरेलवी हजरात की मस्जिद है, वहां हम नमाज ना पढ़ें या पढ़ें, इसका इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये बात हमें कौन बताएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है ना, फिर वो आपसे तफसीलात पूछेंगे कि बरेलवी हजरात की मस्जिद में होता क्या है, क्या आपकी मस्जिद आपके घर के करीब वो मस्जिद है या दूसरी भी कोई मस्जिद मौजूद है, ये वो फिर बहुत सारी तफसीलात आपसे पूछेंगे। देखें शेख जो होता है ना वो आपको जो मशवरा देता है वो सिर्फ किताब को देख करके मशवरा नहीं देता कि उसने किताब पढ़ी हुई है, फिका की किताब पढ़ी हुई है और उसने जो है वो मसाइल का इल्म हासिल किया हुआ है, तो अब आपने उससे पूछा, उसने जो है वो किताब में जैसा कि मसाइल लिखे हैं वैसे उसने बता दिया आपको, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट अ शेख इज। ये जो रोल है ना, ये जो काम है ना, ये मुफ्ती का काम है, ये फतवा देता है, आप उसके सामने जो है वो सवाल रखते हैं, वो जो है वो अपने इल्म के जो उसका किताबी इल्म होता है या किताबी के अलावा भी उसका जो है वो जमाने अहवाल जमाने वगैरह का इल्म होता है, उसकी रोशनी में वो आपको फतवा दे देता है। आपकी ज़ाती जिंदगी के बारे में उसको नहीं पता होता ना, वो पूछता है ज्यादा आपके, कभी कभार मुफ्ती आजाद पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई
बैकग्राउंड उनको नहीं पता होता, बस वही होता है जो आप उनको बताते, बस उससे ज्यादा उनको नहीं पता होता। शेख का ये काम नहीं है। शेख वो होता है कि जो कि आपको पहले से जानता है और आपको इन डेप्थ जानता है, तो वो जो आपको जवाब देते हैं ना, वो सिर्फ फिकही किताब की बुनियाद पे जवाब नहीं दे रहा होता या जमाने के अहवाल की बुनियाद पे जवाब नहीं दे रहा होता, बल्कि दैट प्लस योर सेल्फ, ठीक है ना, आपकी आपके बारे में जो इल्म है वो उसकी रोशनी में भी आपको जवाब दे रहा हो, ठीक है। ये फर्क है मुफ्ती, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ मुफ्ती एंड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ शेख, ये फर्क है इन दोनों, ठीक है। शेख डॉक्टर की तरह होता है, होते हैं, हमारी कंडीशन के हिसाब से हमारी इसलाह और इलाज करते हैं। एब्सोल्यूट एग्जैक्ट बिल्कुल सही, डॉक्टर इज द बेस्ट यानी तमसील, ठीक है ना, या एग्जाम्पल ऑफ अ शेख, ठीक है, बस वो जिस्मानी और रूहानी वाला फर्क, कस्टमाइज आंसर बेस्ड ऑन पर्सनल सिचुएशन। पैरा तो दिलासा, हौसला अफजाई और ये जो ढारस बांधने का काम है, ये कौन कर रहे हैं? शेख कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के शेख, ठीक है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तबलीग अहकाम है, वो करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कल्ब को फारिग फरमाने, उसका असर किसी ने कुछ लिया या नहीं लिया उसकी निगहदाश्त आपके जिम्मे नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें मशगूल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब को मगमूम ना करें, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम तो मगमूम होते थे, नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब जो है वो परेशान होता था, ठीक है ना। ये जो कहा जा रहा है ना कि आप नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम तो होते नहीं थे, नबी अलैहिस्सलाम को तो कोई परवाह ही नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कोई फिक्र ही नहीं थी कि लोग जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे, लोग ईमान नहीं ला रहे, है ना, और अल्लाह ताला खामखाई उसको कहते हैं ना अनसोलिसिटेड, है ना, बिन मांगे की मशवरे दिए चले जा रहे हैं, या बिन मांगे के जो है वो दिलासे दिए जा रहे हैं, बिन मांगे के जो है वो ढारस बंधाए जा रहे हैं, नहीं, बिन मांगे का ढारस अल्लाह ताला नहीं बांध रहे नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, अनइनवाइटेड या अननेसेसरी ढारस नहीं बांध रहे नबी अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम को गम होता था, आप के ऊपर ये कैफियत तारी होती थी, नबी अलैहिस्सलाम बशर बनाया अल्लाह ताला ने, इंसान बनाया अल्लाह ताला ने आपसे, और इंसान के अंदर ये कैफियत रखी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना उन सहाबा के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम इतना नाराज थे, इतना नाराज थे, उनकी शक्ल देखने से इनकार कर दिया, तो तारी होती थी ना कैफियत, लेकिन ऊपर से शेख साहब जो है फिर नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना, प्यार से नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला जो है वो प्यार से ही समझाते थे, क्योंकि महबूब थे, और नबी अलैहिस्सलाम की दिल की कैफियत ऐसी थी कि डांट भी अल्लाह ताला, अच्छा अजीब मामला है, अजीब, अभी इसके ऊपर कल रात से मेरे जहन में बात चल रही है, अभी जो है वो अब तो लगता है कि कहनी पड़ेगी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये कैफियत तारी होती थी, और अल्लाह ताला जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को फिर समझाते थे, और एक दो दफा तो ऐसा भी किया कि जिसको कि बहुत हमारे मशाये फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरी मजाल नहीं, हमारे मशाये बड़े इल्म वाले, तकवा वाले, मारिफत वाले, वो फरमाते हैं कि बहुत सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए, बहुत सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए, ठीक है ना, और उनमें से एक मुकाम जो है वो वही सूरह बनी इसराइल जो कि अभी पढ़ के हमने खत्म करी है, उसके अंदर वहां पर, ठीक है, और दूसरा मुकाम जो है गालबन सूरह हूद के अंदर जो मुकाम है, जर्रा बराबर भी अगर आप उनकी तरफ झुके ना, तो फिर हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और ये कर देंगे, इतना सख्ती से। अच्छा, कोई अपने बच्चे को डांटता है या अपने महबूब को, अपने पसंदीदा को डांटता है, तो क्या ख्याल है आपका? अपने पसंदीदा, अपने महबूब, अपने चहीते, राइट, को वो कोई डांटता है, बड़ा बाप डांटता है, माँ डांटती है, तो आपका क्या ख्याल है? सारी दुनिया के सामने डांटते हैं, सारी दुनिया को बता के डांटते हैं, ठीक है, या इसलाह करते हैं भी, डांटना हर वक्त तो डांटते नहीं है, कभी एक दो दफा डांट दिया, ठीक है, कभी एक दो दफा जरा सख्ती से बात कर दी, ठीक है ना, तो क्या सारी दुनिया के सामने करते हैं? नहीं, दुनिया से छुपा के करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, छुपा के करते हैं ना, ठीक है ना, कहते हैं ना जी इज्जत रखने, जरा दुनिया के सामने रुसवा हो जाएंगे, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ऊपर से जो है वो उनकी इसलाह हो रही है, ऊपर से इनको जो है वो सख्ती के साथ कहा जा रहा है, तो ये तो फिर इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो वसलाम, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम, ठीक है ना, वो हैं, और अल्लाह ताला जो है वो आप सरसरम की इस्लाह भी फरमा रहे हैं, जैसे प्यार मोहब्बत के साथ, यहाँ पर आप ऐसा ना कीजिए, आप अपने आप को गम में हलाक ना कीजिए, आप उन लोगों की परवाह ना कीजिए, यानी जो आप कर रहे हैं दिस इज नॉट द राइट थिंग, इसकी जो है आप इस्लाह कर लीजिए। ये जो इस्लाह कर रहे हैं प्यार मोहब्बत वाली, ये भी ऐसे कर रहे हैं कि सारी दुनिया के सामने कर रहे हैं। अच्छा, उस दुनिया के अंदर सिर्फ ईमान वाले नहीं है कि जो नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अल्लाह का रसूल आप उनकी इज्जत करते हैं, आपसे तो मोहब्बत करते हैं, नहीं, कुरान शरीफ को सिर्फ ईमान वाले तो नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ को तो दुश्मन भी पढ़ते हैं, काफिर भी पढ़ते हैं, राइट, यहूद और नसारा भी पढ़ते हैं, मुशरिकीन भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने उन सब के सामने नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह फरमाई, राइट, उन सब के सामने नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन दो चार दो एक दो मकामात के ऊपर सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए अल्लाह ताला ने सबके सामने, और सिर्फ उस जमाने वालों के सामने नहीं, आज के जमाने वालों के भी सामने, और जब तक ये कुरान दुनिया में रहेगा उस वक्त तक जो है वो लोगों को जो है वो ये चीज पता चलती रहेगी कि देखो शेख साहब ने जो है वो अपने मुरीद साहब की कैसे जो है वो इस्लाह फरमाई। तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा करके देखें कि आपका बड़ा आपकी इसलाह करे, जबकि आपका एक बड़ा इज्जत वाला मुकाम बन गया है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपको पीपल लुक अप टू यू, राइट, एंड देन द वन अबव यू टेल्स यू दिस इज नॉट राइट, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर, ठीक है ना, बर्दाश्त कर लेंगी या बर्दाश्त कर लेंगे, हाँ कर तो लेंगे, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकेगा, बहुत कम लोग बर्दाश्त कर सकेंगे, और वो बर्दाश्त करेंगे कि जिनका कौन बर्दाश्त करेगा, चलिए बताएं ना कौन बर्दाश्त कर पाएगा इस तरह की सिचुएशन को, अभी थ्योरेटिकली ये बात कर रहे हैं, जब गुजरेगी ना तो वो तो पता चलेगा उस वक्त क्या करेंगे, लेकिन अभी तो हम खाली थ्योरेटिकली कि भाई कितना मुश्किल काम है, और फिर हम थ्योरेटिकली ही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन बर्दाश्त कर पाएगा इस वाली बात, कौन बताए जी बताएं जरा कौन बर्दाश्त कर पाएगा इस बात को, जी जिनका नफ्स कमजोर हो जाता सही बात है, वैसे वो बर्दाश्त कर सकता है जो अल्लाह के लिए करे, जिसका ताल्लुक मजबूत होगा, किससे ताल्लुक मजबूत होगा, जिनका मानने का मिजाज होगा, बहुत अच्छे अच्छे जवाब है वैसे ये, ठीक है, लेकिन जो आज सुनना चाह रहा है, जिसकी निस्बत स्ट्रांग होगी, किसके साथ निस्बत उसकी स्ट्रांग होगी, वफादार आदमी बर्दाश्त कर लेगा इसको, है ना, क्या मतलब वफादार निस्बत, अब आप तो कम से कम निस्बत की टर्म्स में बात किया ना, नहीं वफादारी का लफ्ज भी सही है, ठीक है, जिसको हकीकी मोहब्बत होगी, किससे हकीकी मोहब्बत होगी, ऊपर वाले से हकीकी मोहब्बत होगी, ऊपर वाले से हकीकी मोहब्बत होगी, और जो बराबर वाले हैं, जो अपने लेवल के लोग हैं, उनसे उसको कम मोहब्बत होगी, या उनकी इसको कम फिक्र होगी, इसको असल फिक्र जो है वो अपने ऊपर वाले की होगी, असल इसके लिए जो इंपॉर्टेंस है वो ऊपर वाले की इंपॉर्टेंस है, नीचे वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कोई गर्ज नहीं उसकी, नीचे वाले अच्छा सोचें अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं, और नीचे वाले अगर उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, पीपल हु आर सिंसियर इन हैविंग देयर इस्लाह डन, यानी वर्टिकल निस्बत उनकी मजबूत होगी, हॉरिजॉन्टल निस्बत जो है ना वो वीकर होगी, तब वो बर्दाश्त कर जाएंगे इस वाली चीज को, ऐसे पब्लिक नाउज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एग्जाम्पल को अगर हम सोचें तो उसको कहेंगे पब्लिक इंसल्ट, अपनी एग्जाम्पल के ऊपर रख करके सोचें तो उसको कहेंगे पब्लिक इंसल्ट, है ना, पब्लिकली इंसल्ट किया जाना, ये सिर्फ वही बर्दाश्त कर सकता है जिसको कि पब्लिक की फिक्र ना हो, या जिसको पब्लिक की फिक्र हो भी तो ऊपर वाले से कम फिक्र हो उसको पब्लिक की, कम हो, ठीक है ना। यानी गालिब फिक्र जो है वो ऊपर वाले की हो, और नीचे वालों की फिक्र है तो मगलूब फिक्र है, गालिब फिक्र नहीं है, ठीक है। तो भाई अब हमारे सामने एक गोल तो आ गया ना कि हमारा भी जो है ना वो ताल्लुक ऊपर से गालिब होना चाहिए, ऊपर वाला ताल्लुक गालिब होना चाहिए, और बराबर वालों के साथ या नीचे वालों के साथ, या छोटे हैं हमारे या हमारे औलाद हैं या हमारे शागिर्द हैं वो छोटे नीचे वाले कहलाएंगे, या बराबर वाले हैं उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो मगलूब ताल्लुक होना चाहिए, वो लेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। वरना बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर इस चीज को। हमने तो ऐसे ऐसे डांटे सुनी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, जिसको पब्लिक इंसल्ट के डेफिनेशन में डाला जा सकता है, और हमने दूसरों को भी डांटे सुनते हुए देखा, और ऐसा डांटे सुनते हुए देखा है कि उनके ऊपर तो पता नहीं क्या गुजर रही होगी, हम पे ये गुजर रही थी कि काश हम यहाँ पे ना होते, जब उनको डांट पड़ रही थी तो काश हम यहाँ पे ना होते, ऐसी दिल के ऊपर गुजर रही थी उस वक्त, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई वो वाली बात जो कि अभी यानी तफसीर में हमने पढ़ी उससे रिलेटेड, सही है, कि नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमाई और सबके सामने फरमाई, ठीक है, सबको बता के फरमाई। अच्छा दूसरी जो बात है ना, जो कि कल से शायद से दिमाग में चल रही है, वो बड़ी अजीब बात है, जो कि पता नहीं आपने पहले कभी सुनी होगी नहीं, मैंने भी पहले कभी ये बात नहीं सोची थी, या दिल में कभी ये बात नहीं आई जी। कभी कभी आप किसी को डांटते हैं तो ऐसा ही फील होता है, हाँ आपका भी फील होता है कि काश आप वहां ना होती, यानी आप उस क्लास में ना होती, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है, सही है। अच्छा दूसरी बात यह है कि देखिए कुरान अजीम शान ये जो है वो हमारे हाथों में है, ठीक है, लेकिन ये कुरान जो है ये कब जो है वो नाजिल हो रहा, ठीक है ना, ये किस वक्त नाजिल हो रहा था, ये नाजिल हो रहा था नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के अंदर, ठीक है। अब इस कुरान में क्या चीजें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये कि जैसे अभी बात हुई कि अल्लाह ताला जो है वो इस्लाह फरमाए चले जा रहे हैं, इस्लाह फरमाए चले जा रहे हैं, इस्लाह फरमाए चले जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की इस्लाह फरमाए चले जा रहे हैं इस कुरान, और कुरान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हयात में नाजिल हो रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जैसे जैसे ऊपर से इस्लाह आ रही है नबी अलैहिस्सलाम उसको छुपा तो नहीं रहे अपने पास, है ना, कि मेरे शागिर्दों को पता ना चले कि मेरी इस्लाह हो रही है, मेरे मुरीदों को पता ना चले कि मेरी इस्लाह हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम तो जैसे ऊपर से आ रहा है वैसे आगे पहुंचा रहे हैं, राइट, सहाबों को बता रहे हैं भाई ये आयत नाजुल हुई है, भाई ये आयत नाजुल हुई है ना, ये अल्लाह ताला ने मेरी इस्लाह फरमाई है तुम भी सुनो, राइट, ये अल्लाह ताला ने जो है मुझे सख्ती के साथ जरा बात फरमाई है तुम भी सुनो, ठीक है। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ इस्लाह हो रही है बल्कि और भी क्या चीज हो रही है, और ये चीज हो रही है कि जो भी काम नबी अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं साथ साथ, ऊपर से साथ साथ जो है वही भी नाजुल हो रही है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ठीक है, कि हमने ये किया है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बहुत सारे मुकामात में कुरान के अंदर आपको ये मिलेगा, हमने ऐसा चाहा ये हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अभी कल जो है वो हमारी तरावी के अंदर कारी साहब इमाम साहब जो है वो सूरह अहज़ाब की तलावत कर रहे थे, ठीक है ना। अब सूरह अहज़ाब जो है वो क्या है, उसके अंदर जो मेन किस्सा है वो जंगे अहज़ाब का किस्सा है ना, जंगे अहज़ाब जो हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि पूरी की पूरी वर्ल्ड पावर जो जमाने की थी इकट्ठी होकर के जो है मदीना मुनव्वरा के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, ठीक है। तो अब मदीना मुनव्वरा की जो 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 प्रोटेक्शन थी, उसकी जो डिफेंस था, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया, नबी हम सीरत की किताब पढ़ेंगे तो ज्यादातर आम सीरत की किताब में होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो मशवरा तलब किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है फलाने मशवरे को कबूल किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो क्या कहते हैं खंदक खोदने के अंदर शामिल रहे, राइट, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो ये हुक्म जारी किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जारी हुक्म किया, ठीक है। लेकिन क्या मुसलमानों के हाथ में सिर्फ सीरत की किताब मौजूद है? क्या मुसलमानों के हाथ में, हमारे हाथ में और इवन दुश्मनों के हाथ में क्या सिर्फ सीरत की किताब मौजूद है? नहीं, सिर्फ सीरत की किताब तो नहीं है जिसमें कि क्रेडिट जो है वो कामों का नबी अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है, बल्कि हमारे हाथ में क्या भी मौजूद है? अल्लाह का कुरान भी मौजूद है, राइट? और अल्लाह के कुरान के अंदर क्या है? सूरह अहज़ाब खोल करके पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला ने ये किया, अल्लाह ताला ने वो किया, अल्लाह ताला ने ऐसे किया, अल्लाह ताला ने वैसे किया, राइट? और अल्लाह ताला ने जो है वो आपको उन जगहों की जो है वो अता फरमा दी जहां पे आप अभी गए भी नहीं थे, और ये अता फरमा दी और ये अता फरमा दिया, ठीक है ना? तो भाई जो कुरान पढ़ता है तो उसकी तवज्जो किधर जाएगी? अल्लाह की तरफ, एक करने वाले तो अल्लाह ताला है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो फिर बीच का एक जिसको हम कहते हैं मोहरा रह गया ना फिर, राइट? मोहरा रह गया ना कि भाई अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बतौर मोहरे के इस्तेमाल करके ये करवा लिया, ये करवा लिया, ये करवा लिया, ये करवा लिया, ठीक है ना? अच्छा, ये है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मामला कि जिसके अंदर क्रेडिट बेशक नबी अलैहिस्सलाम को भी जाता है, लेकिन कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स क्या हैं? अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो फिर क्रेडिट नहीं रह गया, बहुत कम रह गया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी क्या फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, सारी की सारी तारीफ जो है एक अल्लाह के लिए है, नसरा अब्दा, जिसने अपने बंदे की मदद करी, वह हजमल अहजाब वहदा, और सारे के सारे अहजाब, सारी की सारी जमातों को जो है वो अकेले ही ठिकाने लगा दिया उनको, सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को, ठीक है? तो अब हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते हैं? ये भी खुद फरमा दिया, मुझसे तुम इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी सलाहियतों की वजह से नहीं, कि मेरे अंदर ये सलाहियत थी, मेरे अंदर ये इल्म था, राइट? मैंने जो है वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हुई थी और मेरे अंदर ये अकल थी, मैंने अपनी अकल से देखो कितने जबरदस्त फैसले किए हैं, इस वजह से मुझसे मोहब्बत करो, कुछ नहीं फरमाया, बल्कि मुझसे मोहब्बत करो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत। भाई अल्लाह ताला अपनी मर्जी से करता है ना, मैंने कोई फोर्स को थोड़ी किया अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत करने के लिए, राइट? तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि आप मेरे महबूब हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो अपने बंद अपने उम्मतियों से कह दो कि तुम वो भी आपसे मोहब्बत करें क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की बात, ठीक है ना? अब यही जो पिक्चर है ये सहाबा के जमाने में भी ऐसे ही कंटिन्यू, ठीक है ना? कि सहाबा के जमाने में भी कुरान अगरचे के नाजिल होना तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बड़ा फ्रेश नाजिल हुआ हुआ था। और सहाबा में जो खुसूसन उम्मा, वो जो खुलफाए राशिदीन थे ना, उनकी भी ऐसी जबरदस्त तरबियत हुई हुई थी, ऐसा जहन बना हुआ था कि वो भी अपने सारे अफआल को और आमाल को अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने किया, हत्ता कि जब उनको कोई नजर आता था कि भाई जरा तवज्जो जो है वो अल्लाह से हट करके बंदे की तरफ जा रही है, बंदे की सलाहियतों की तरफ जा रही है, वो फौरन कोई ऐसा काम करते थे कि बंदे से तवज्जो हट करके अल्लाह की तरफ चली जाए। जैसे कि मशहूर वाक्य है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में जो फतुहात हो रही थी, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जहां जाते थे फतह होती थी, जहां जाते थे फतह होती थी। उमर अल्लाह तआला ने क्या किया कि कौन थे वो, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला, उनको भेज दिया जाओ जाकर के खालिद से कहो सिपे सालारी तुम्हारे हवाले करे, और अगर चाहता है तो आम सिपाही की तरह लड़े, अगर चाहता है तो वापस मदीना मुनव्वरा आ जाए, ठीक है ना? लोगों ने कहा खालिद जो है इतने जबरदस्त सिपे सालार, नहीं उसामा बिन ज़ैद नहीं थे, अब्दुल्लाह इब्ने ये जर्राह रहता, ठीक है? तो खालिद रातान जो है वो जहां जाते हैं फतह मिलती है, ये आप जो है वो लीडर चेंज कर देंगे तो मुसलमानों को तो नुकसान हो जाएगा, जाने चली जाएंगी। उमर रातान ने क्या जवाब दिया, मैं ये देख रहा था कि लोगों की नजरें अल्लाह से हट करके खालिद के ऊपर जमनी शुरू हो गई हैं, और वो फतह को खालिद के साथ मंसूब होने शुरू हो गए हैं, मैंने खालिद को हटा करके लोगों का ईमान बचा लिया, अल्लाह के ऊपर जो उनका तवक्कुल होना चाहिए वो खराब हो रहा था, मैंने उसकी हिफाजत करी है। कि फतह खालिद के हाथ में नहीं है, खालिद होगा या नहीं होगा, नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता अल्लाह ताला की मर्जी से हो रही है। तो उस जमाने में भी जो है खुलफाए राशिदीन के जमाने में भी अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अपने मेहनतें नफी अल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद जो जमाना आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि जो नेक मुत्तकी और मारफत रखने वाले हजरात थे, मोमिनीन हक्कन मोमिनीन जो थे, जो पक्के मोमिनीन थे, उनका तो यही मामला रहा कि वो अपने से मंसूब करने की बजाय, अपनी सलाहियतों से कामयाबियों को मंसूब करने के बजाय वो अल्लाह ही से मंसूब करते रहे, ठीक है, अल्लाह ही से मंसूब करते रहे, ठीक है ना, कि भाई मैं तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास ना अकल ना समझ ना तालीम ना इल्म ना कुछ भी नहीं, जो कुछ अल्लाह का दिया हुआ है बस अल्लाह करवा रहा है, जो कुछ करवा रहा है, ठीक है ना। अल्लाह वाले तो ऐसे ही होते हैं, हर जमाने में अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या हो गया, क्या फर्क हो गया भाई, अल्लाह वाले तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी यही करते थे, सहाबा के जमाने में भी यही करते थे, और बाद में भी अल्लाह वाले यही करते थे, आज भी अल्लाह वाले यही करते हैं, फर्क क्या है, फर्क क्या है, हवा में फर्क है, नहीं वो तो लोगों ने उसको उनकी जात से जोड़ दिया, कैसे, क्यों जोड़ दिया लोगों ने उनको उनकी जात से। अच्छा आपने क्या लिखा था, मैसेज नहीं पढ़े होकर के, अल्लाह ताला मनसूख भी तो कर सकते थे इस्लाह वाली आयतों को, तो शायद अल्लाह ताला एग्जांपल सेट कर रहे थे इस्लाह करने के, इस्लाह कैसे करनी है, अल्लाह ताला मनसूख भी कर सकते थे और अल्लाह ताला जो है ना वो छुपा करके भी आयतें नाजिल कर सकते थे अल्लाह की मर्जी, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखा करके नाजिल किया सारे आयतों को। तो अब जो है वो उस आज के जमाने में और नबी अलैहिस्सलाम के कर्न में, यानी नबी अलैहिस्सलाम का कर्न जिसको फरमाया ना खैरुल कुरून कर्नी, मेरा कर्न, यानी सहाबा कराम का जमाना इंक्लूडेड है इसके अंदर, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने, बाद के जमानों में और उस जमाने में फर्क क्या है, अल्लाह वाले तो उस जमाने भी वैसे ही थे, अल्लाह वाले आज भी वैसे ही हैं और दरमियान में भी वैसे ही हैं, फर्क क्या है, फर्क क्या है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोगों ने उसको उनकी जात से जोड़ दिया, ठीक है, लोगों ने उनको उसकी, लोगों ने कारनामों को इंसानों की जात से जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों की नजरें इंसानों पे जम गई, ठीक है, फर्क यह है कि जो कुरान का नुजूल होता था ना उस जमाने में, जिससे क्या होता था कि देखो ये जो मुसलमानों को कामयाबी मिल रही है, जो नबी अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिल रही है, ये अल्लाह करवा रहे हैं, अल्लाह करवा रहे हैं, अल्लाह करवा रहे हैं, अल्लाह करवा रहे हैं, ये जो रिमाइंडर्स थे ना, ये आगे के जमाने के अंदर खत्म हो गया, कुरान का नुजूल तो खत्म हो गया, अब जो है वो करना क्या था उम्मत ने, करना क्या था उम्मत ने, उम्मत ने जो है वो कुरान को जिंदा रखना था और कुरान की रोशनी में ही उनको जो है वो सारी कामयाबियों को देखना था, लेकिन कुरान को जो है वो छोड़ दिया, ठीक है ना, कुरान को रटने की किताब बना लिया खाली, हालांकि हिफ्ज करना सहाबा नबी अलैहिस्सलाम हाफिज कुरान थे, सहाबा हाफिज कुरान थे, तो ये नहीं है कि हिफ्ज करना जैसे कि कुछ लोग मॉडर्न इस्लाम वाले लोग कहते हैं कि हिफ्ज करना बेकार है, वक्त जाया कर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सिर्फ हिफ्ज करना और उससे हिदायत ना लेना और उससे इबरत ना पकड़ना और अपने अहवाल के ऊपर उसको मुंतबिक ना करना, उसको अप्लाई ना करना, ये छोड़ दिया। तो अब जो है वो कामयाबियां जो मुसलमानों को मिलती थी, ये जी शेरशाह सूरी ने ये कामयाबी हासिल करी है और ये कामयाबी जो है वो महमूद गजनवी ने हासिल करी है और ये कामयाबी जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी ने हासिल करी है और ये कामयाबी जो है फलाने ने, अच्छा ये तो हो गई पॉलिटिकल कामयाबियां, राइट, जंगी कामयाबियां, और जो है वो जहां पे रूहानी कामयाबियां हैं, वो जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो, उन्होंने जो है वो ये वाली रूहानी कामयाबियां हासिल करी और जो है वो मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाली रूहानी कामयाबियां हासिल करी और फलाने ने जो है वो ये वाली रूहानी, अल्लाह किधर गया, अल्लाह तो मिलता ना कुरान में, जब कुरान को जो है वो किताब हिदायत के तौर पर आप अपने सामने रखते हर वक्त, तो फिर कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी से ये काम हुआ, अल्लाह ने ऐसे किया, अल्लाह ने ऐसे किया। हाँ, मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह। हाँ, इंसानों को भी एक्नॉलेज करते हैं हम, जैसे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं उसी तरह से औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि आप अल्लाह को पिक्चर से ही निकाल दें और आप जो है वो अपनी सारी की सारी निगाहें जो है वो हजरत जी के ऊपर गाड़ दें। आज के जमाने में हजरत जी होते हैं या शेखुल इस्लाम होते हैं या फलानी पीर साहब होते हैं, अल्लाह पिक्चर से गायब, हजरत जी पिक्चर ही पिक्चर में, सारी पिक्चर पूरी की पूरी हजरत जी से भरी हुई है, अल्लाह उस पिक्चर में कहीं जगह ही नहीं ना उस बिल्ला अल्लाह के लिए। इसी वजह से झूठ बोलते हैं, हजरत जी को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ ये तो अल्लाह को पता है ना कि झूठ कौन बोल रहा है, हजरत जी को तो सब चीजें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की फिक्र ही कोई नहीं कि अल्लाह दो देख रहा है, अल्लाह का मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक है, अल्लाह ताला की वजह से हजरत जी जो है वो मुझे गाइड कर पा रहे हैं, इसकी कोई ये नहीं। बस अब हजरत जी ही हजरत जी सब कुछ बन गए, अब झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं और जो है वो उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे हैं, राइट, ताकि हजरत जी खुश हो जाए या जो भी जिसका पीर है वो उसका वो उससे खुश हो जाए। ये कौन लोग करते हैं जो कि अल्लाह के कलाम से हिदायत नहीं हासिल कर रहे हो, रट रहे होते हैं या सवाब के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे होते हैं और से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब ये सजा वाली चीज है, ये इंसान को मुस्तहिक सजा बना देती है ये चीज। अब क्या होता है जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला बतौर सजा के उनको फिर शैतान के हवाले कर देता है, और ये लोग जो होते हैं फिर फसाद का सबब बनते हैं, ये लोग जो है फिर फितनों का सबब बनते हैं, और यही लोग फिर मुनाफिकीन के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, मुनाफिकीन के रास्ते के ऊपर चल पड़ते, ठीक है, निफाक के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, क्योंकि ये सजा है अल्लाह की तरफ से कि तुमने मुझे बुला दिया, तुमने मेरे कलाम को जो है वो साइड पे लगा दिया एकदम, आंखों से लगाया जाता हूं और ये किया जाता हूं। वो जो कुरान की फरियाद वाली नज़म भी अभी सुनाई थी हमारे दोस्त भाई ने, ठीक, तो ये गलती जो है ना बहुत, वी नीड टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट दिस, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि हम ये गलती ना करें और अल्लाह ताला से मदद मांगे बगैर हमसे एहतियात भी नहीं हो सकती, हम तो एहतियात करने के भी काबिल नहीं। कल को क्या वाकया हमारे साथ पेश आ जाए, कल किस तरह से शैतान जो है वो हमें धोखे में मुबतला करके जो है वो किसी इंसान के पीछे लगा दे, या धोखा है असल में, कोई लगता वक्ता कोई नहीं है, वो झूठ होता है कि हम तो हजरत जी वाले हैं, झूठ होता है सारा का सारा, असल में शैतान के मुरीद वही होते हैं, नाम जो है वो हजरत जी का ले रहे होते हैं कि हम तो हजरत जी के मुरीद हैं, ठीक है। और जैसे इन्होंने लिखा कि जब हजरत जी से डांट पड़ती है तो सारी हवा निकल जाती है इसके अंदर, हजरत जी के भी खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि असल में तो हजरत जी के मुरीद नहीं थे ना, असल में तो शैतान के मुरीद थे, ठीक है। तो ये है असल दीन, ठीक है ना, और असल दीन में फिर ये ऑल ऑफ दीज, दिस इज अ मॉडल उसवाय हसना, इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। जब तक जो है ना वो किताबी दीन चल रहा होता है ना, वन डायमेंशनल दीन, उसमें ये सारी चीजें होती नहीं है, ना शेख होता है, ना शैतान का कोई तसव्वुर होता है कि शैतान मुझे बहका रहा है और शैतान ये कर रहा है, वो कुछ नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर ये सारे रोल्स नहीं होते, वो तो एक वन डायमेंशनल दीन होता है। किताब पढ़ ली, उसके अंदर पढ़ दिया कि हाँ जी तरावी पढ़ना जो है बड़ी नेकी का काम है और तरावी के इतने सवाब हैं, तो अब खातून खाना जो है ना वो तरावी पढ़ने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में जाना शुरू हो जाती है, ये वन डायमेंशनल दीन है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अंदर ना शेख है ना शैतान का कोई तसव्वुर है, ना जो है वो हकीकत में जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों की परवाह है, ना कुछ है, बस वो अपने मन मर्जी क्या, अपनी अकल और अपना, वो तो दीन है ही नहीं, वन डायमेंशनल तो दीन है ही नहीं भाई, दीन तो थ्री डायमेंशनल, कम अज कम थ्री डायमेंशन, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितनी भी डायमेंशन में ऐड करते जाए, लेकिन टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल दीन नहीं, दीन तो थ्री डायमेंशनल चीज है, और इसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये किरदार होते हैं जो कि जमाने के साथ किरदार के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन मॉडल चेंज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।